सपन्या अध्याय एक। आइए हम अपनी अपनी बाइबल में सपन्या की पुस्तक खोलें। पहले पद में लिखा है सपन्या अध्याय एक पद एक। आमोस के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में सपन्या के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमरिया का परपोता और गदल्याह का पोता और कूशी का पुत्र था, यहोवा का ये वचन पहुंचा। छोटे भविष्यद्वक्ताओं की पृष्ठभूमि के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, परंतु सपन्या के बारे में हमें अन्य छोटे भविष्यद्वक्ताओं की तुलना में अधिक जानकारी प्राप्त है। कारण यह है कि वो यहां अपनी वंशावली देता है जो राजा हिजकिय्याह तक जाती है। राजा हिजकिय्याह यहूदा का एक महान राजा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि सपन्या राजसी परिवार से था। उसने राजा योशिय्याह के राज्यकाल में यहूदा में भविष्यवाणी की थी। योशिय्याह का राज आत्मिक क्षेत्र में काफी सफल रहा था। उसके राज्य में धर्म सुधार आवश्यक हुआ था, चाहे वो सुधार एक बाहरी दिखावा ही था, क्योंकि वो योशिय्याह के समय में भविष्यवाणी कर रहा था, इसलिए वो यिर्मयाह का समकालीन था। जिस समय दक्षिणी राज्य यहूदा पतन की ओर बढ़ रहा था, अर्थात बाबुल की बंधुआई की ओर बढ़ रहा था, उस समय यिर्मयाह और सपन्या दोनों यहूदा में भविष्यवाणी कर रहे थे। परमेश्वर ने सपन्या के द्वारा ये कहा, सपन्या अध्याय एक पद दो, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। सपन्या की भविष्यवाणी की पूर्ति के निश्चय ही दो पक्ष हैं। पहला, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा विनाश। दूसरा, अंतिम समय का, जो आने वाले महाक्लेश का समय होगा। सपन्या परमेश्वर के इस आने वाले दंड और कोप की भविष्यवाणी करता है, जो इस युग के अधर्मियों पर आने वाला है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। सपन्या अध्याय एक पद तीन, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। निश्चय ही ये पृथ्वी पर परमेश्वर के आने वाले दंड महाक्लेश के संदर्भ में है। ये पृथ्वी एक ऐसे महापरिवर्तन से गुजरेगी जैसा कभी नहीं हुआ और ना होगा। यीशु ने इस समय के संदर्भ में कहा था, महाक्लेश का समय ऐसा होगा जैसा ना तो कभी पहले हुआ और ना फिर कभी होगा, क्योंकि समस्त पशु मछलियां और मनुष्य परमेश्वर के इस दंड से बुरी तरह प्रभावित होंगे, परमेश्वर की यही वाणी है। सपन्या अध्याय एक पद चार, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। ये याजक असल में वे पुजारी है जो यहोवा त्याग के समय में वहां थे। दूसरे राजा की पुस्तक में इनको ऊंचे स्थान के पुजारी कहा गया है, क्योंकि उस समय यरूशलेम और यहूदा में मूर्ति पूजा काफी बढ़ गई थी, इसलिए परमेश्वर उनको उनके दुश्मनों के हाथों में देने की बात कर रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया है और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है कि प्रोफेसर शीलो ने हाल ही में ऐतिहासिक खुदाई में दाऊद के शहर को ढूंढने की कोशिश की। वो इसे ओफेल पर्वत कहते हैं जो गीहोन की तराई के ऊपर है। ये ऐसी पहाड़ी है जो गीहोन तक नीचे आकर फिर ऊपर जाती है। वहीं पर वो तालाब भी है जिसके नीचे हिजकिया ने सुरंग बनाई थी। इस भविष्यवाणी से बहुत पहले इसी पहाड़ी की ढलान पर पुराना यरूशलेम शहर बसा था। यही शहर या ओफेल पर्वत जिसे दाऊद के शहर के नाम से जाना जाता है। आपने पहले साल के अभियान में जब वो यहां खुदाई कर रहे थे तब यही वे रबी थे। ये रूढ़िवादी रबी सोचते थे कि प्रोफेसर शीलो इन खोदी हुई हड्डियों को उचित सम्मान नहीं दे रहे थे। रूढ़िवादी रबी मृतकों के बारे में बहुत अधिक आदर दर्शाते हैं। इस कारण जब भी कोई पुरातत्व वेता किसी हड्डी को पाता था तो वे उसका निरीक्षण करना चाहते थे कि हड्डी मनुष्य की है या नहीं। यदि हड्डी मनुष्य की है तो वे उसे आशीषों के साथ फिर से दफन कर देते हैं। प्रोफेसर शीलो अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने वाले व्यक्ति थे। मुझे उनके साथ एक बार खाना खाने का मौका मिला। उनके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई आकर मेरे खुदाई अभियानों के काम में हस्तक्षेप करे। मेरे विचार में पुरातत्व कार्य एक विज्ञान है और मैं नहीं समझता कि किसी भी पुरातत्व प्रोजेक्ट में धार्मिक बातों को जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जानबूझकर इन रबियों की इच्छा को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से इन रबियों ने एक बड़ी हड़ताल कर दी और बड़ा बलवा किया। प्रोफेसर शीलो द्वारा पुरातत्व के वैज्ञानिक परिक्षेत्र की सुरक्षा करना एक सिद्धांत की बात थी, जिससे कि वो धार्मिक संस्कार ना बन जाए। अतः उनको जब भी कोई हड्डी मिलती तो वे कहते, ये तो कुत्ते की हड्डी है, इसको दबा दो। परंतु रबियों को अंत में ये पता चल गया कि उन्होंने पिछली गर्मियों में प्रोफेसर शीलो की खुदाई के समय बड़ा गदर मचाया। प्रोफेसर शीलो मुझे बता रहे थे कि खुदाई में जब कोई घर निकलता था तो उनके मन में एक अजीब सा श्रद्धा भाव उत्पन्न होता था। उन टूटे पत्रों को, उन घरों के खंडरों को जब वह खोदते थे, तब उन घरों की भीतरी हालत एवं रख रखाव एकदम वैसा ही मिलता था जैसा बाबुल की सेना द्वारा उजाड़े जाने के समय था। उन्होंने घरों को ढा दिया था। जब वे बंदवाई से लौटे तब वहां झाड़ियां उग आई थी और सब घर समतल हो गए थे। इसलिए घरों के पुनर्निर्माण की अपेक्षा उन्होंने वहां मलवा डालकर नए घर बना दिए। उन्होंने बताया कि जब वो इन घरों के खंडरों में खुदाई कर रहे थे तब वहां की स्थिति वैसी ही थी जैसी बाबुल के द्वारा उन्हें बंदवाई में ले जाते समय थी। उन्होंने बताया कि उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने हरेक घर से असंख्य छोटी छोटी मूर्तियां निकाली। उन्होंने मुझे इन मूर्तियों के असंख्य चित्र दिखाए। ये निश्चय ही यरमाया यशाया द्वारा मूर्ति पूजा के विरुद्ध दी गई चेतावनियों का प्रमाण है। इसी कारण उन्होंने परमेश्वर के दंड की भविष्यवाणी की थी। यहां एक बार फिर सपन्या नबी परमेश्वर के दंड और विनाश के बारे में कह रहा है जो आने वाला था। वो बाल की उपासना का उल्लेख कर रहा है। ये छोटी मूर्तियां बाल की थी, जिसका अर्थ है प्रभु। ये याजक, पुजारी और ऊंचे स्थानों के याजक बाल के पुजारी थे। सपन्या अध्याय 1 पद 5। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं। ये ज्योतिष विद्या है जिसमें भविष्य की जानकारी सितारों के द्वारा हासिल की जाती है। ये ईश्वर की आराधना करने का एक पुराना तरीका है जो बाबुल के समय में बहुत प्रचलित था। उस समय लोगों का मानना था कि सितारों का उनके जीवन पर एक खास असर होता है, विशेष करके जन्म के समय सितारे आपका भविष्य निर्धारण करते हैं। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आज के इस आधुनिक युग में जहां विज्ञान इतना कुछ हमें बताता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जन्म पत्री को देखकर दफ्तर या काम जाना या नहीं जाना निश्चित करते हैं। वे अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं। सपन्या अध्याय 1:5 में आगे लिखा है, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोले की भी शपथ खाते हैं। ये दरअसल अमोनियों की मूर्तियां हैं जो मोले के तुल्य है। सपन्या अध्याय 1:6, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे। यहां हम देखते हैं कि वे मूर्तियों की पूजा कर रहे थे और यहोवा को भूल गए थे, उन्होंने यहोवा को नहीं खोजा। सपन्या अध्याय 1:7, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। परमेश्वर का दिन से तात्पर्य है परमेश्वर के आने वाले न्याय का दिन। सपन्या अध्याय 1:7 में आगे लिखा है, यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। आपको याद होगा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 19वें अध्याय में भी परमेश्वर के उस क्रोध के दिन के बारे में लिखा है जो आने वाला है। वो आकाश के पक्षियों को उस बीज के लिए आमंत्रित करता है जिसमें उन्हें राजाओं की देह खाने को मिलेंगी। परमेश्वर का कैसे भयंकर क्रोध! उसने एक यज्ञ, एक भोज तैयार किया है और अपने मेहमानों, चील, पक्षी आदि को आमंत्रित करके कहा है, आओ और इंसानों की मांस खाओ। सपन्या अध्याय 1:8 से लेकर 11 तक, और यहोवा को यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। यहोवा की वाणी है कि उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशना में हाहाकार का और टिलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मक्तेश के रहने वालों, हाय हाय करो। मक्तेश असल में ये एक छोटी जगह, एक बाजार है। अगर आप आज यरूशलेम में जाएं तो शहर में ही व्यापारिक स्थान है। ये लंबी पतली तंग गलियां जिनके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें हैं, इसे इब्रानी भाषा में मतकेश कहते हैं। यही वो बाजार है जहां वो अपनी लेन देन करते हैं और यहोवा कहता है। सपन्या अध्याय 1:11-12, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा और जो लोग दाक मधु के तल छठ तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। दूसरे शब्दों में, जैसा आज के नास्तिक जन कहते हैं, परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी मर्जी के अनुसार जी सकते हैं, परमेश्वर को इसे क्या फर्क पड़ता है? वो ना अच्छा करेगा और ना बुरा करेगा। लोग ऐसे जीने लगे जैसे परमेश्वर है ही नहीं, या परमेश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम कुछ लोगों को देखकर चौंक जाते हैं कि वे किस साहस से कहते हैं, हम परमेश्वर को नहीं मानते, और उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध बात करने में कोई डर नहीं लगता। कई बार हम इन्हें परमेश्वर की निंदा करते देख चकित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर की निंदा करने वालों से भी ज्यादा बुरे हैं? वे कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे ऐसे जीते हैं कि जैसे परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे लोग अपने जीवन के किसी भी निर्णय में परमेश्वर को स्थान नहीं देते हैं। मेरे लिए ये परमेश्वर के नाम में शपथ खाने से ज्यादा बड़ी निंदा है कि ये लोग कहते तो हैं, अरे मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, हां मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय वे परमेश्वर को कोई महत्व नहीं देते, कभी परमेश्वर की खोज नहीं करते। वे ऐसा व्यवहार करते हैं मानो परमेश्वर ना तो कुछ भला ही करेगा और ना ही कुछ बुरा। वे परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर की सृष्टि के प्रति बहुत ही बेफिक्री का ख्याल रखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वो निश्चय ही ऐसे झूठे लोगों को दंड देगा। सपन्या अध्याय 1:13। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। भाइयों, अगर आप उस ऐतिहासिक खुदाई को देखें जो प्रोफेसर शीलो ने की है, तो आप केवल विनाश ही देख पाएंगे। सपन्या अध्याय 1:13-18 तक। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने न पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाते हैं। वो रोष का दिन होगा, वो संकट और साकेती का दिन, वो उजाड़ और अधेड़ का दिन, वो बादर और काली घटा का दिन होगा। वो गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने, युद्ध की पुकार और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूली के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। निश्चय ही इस भविष्यवाणी के दो संदर्भ हैं। दूसरे संदर्भ में वो परमेश्वर के न्याय के उस महान दिन के बारे में बात कर रहा है जो पृथ्वी पर आने वाला है।